الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن جلد نمبر 5 سے، اور ہم احکام و مسائل پڑھ رہے تھے پیج نمبر 55 پر، کہ یہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان پیش آیا، تو اس میں سے فقہا نے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی ہے، تو ان فقہا نے کیا آیات، کیا کیا مسائل اور احکام اخذ کیے، ڈرائیو کیے ان کے اندر سے. تو پہلا اور دوسرا ہم نے پڑھ لیا تھا. پہلا تو تھا کہ جی، جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہیے. تو توبہ کی شرائط میں سے جو تیسری شرط ہے، ان میں یعنی کوئی ایسا قدم اٹھانا کہ انسان گناہوں سے بچ بھی سکے. گناہوں سے توبہ تو کر لی، لیکن فیوچر میں بھی گناہوں سے بچ سکے، تو اس میں بھی سب سے اسٹرانگ جو سبب ہے نا گناہوں سے بچنے کا، وہ صحبت چھوڑ دینا ہے. گناہوں کی صحبت یا گناہگاروں کی صحبت، اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر کہ گناہ کرنا آسان تھا. تو یہ پہلا سبق اس میں سے اخذ کیا گیا. دوسرا جو مسئلہ اخذ کیا گیا، یعنی شرعی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں، سبق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان وہ کرے، اور نتائج کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ نتائج یعنی محنت کے مطابق نکل آتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے خلاف بھی یعنی نتائج نکل سکتے ہیں، کوشش بڑی کری. کتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کری، ساری زندگی لگا دی، لیکن ریزلٹس جو ہے نا وہ یا تو بہت تھوڑے آئے، یا کچھ کی زندگی میں تو بالکل ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو تو سب معلوم ہے نا کہ 1000 سال کی زندگی پائی تھی، اور 950 سال تک انہوں نے دعوت لوگوں میں دی تھی کافروں کو. 50 سال آخر کے رہ گئے تھے، جس میں کافر سارے مر گئے تھے طوفان نو میں، لیکن 950 سال انہوں نے دعوت دی، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 50 کے قریب. اتنے کم، اور 900 سال دعوت دے رہے ہیں، 3 نسلوں کو انہوں نے دعوت دی. تو ریزلٹس کتنے اچیو ہوئے ہیں؟ کتنا کم ریزلٹ. اور کچھ تو انبیاء ایسے تھے کہ جن کے اوپر صرف ایک شخص ایمان لے کر کے آیا، ٹھیک ہے، اور کچھ تھے جن کے اوپر کوئی ایک شخص بھی ایمان لے کر کے نہیں آیا. تو ہم کون سے ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسا ایفرٹ کر سکتے ہیں جو کہ انبیاء کے ایفرٹ سے زیادہ ہو؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ریزلٹ اورینٹڈ جو 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 ایفرٹ ہوتی ہے نا، یہ اسلام میں ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کافروں کے یہاں ہوتی ہے ریزلٹ اورینٹڈ ایفرٹ. اس کو یہ آج کئی دفعہ مثالوں سے بتا چکا ہے کہ آپ کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہوں، اسپیشلی سیلز ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کام کرتے ہو نا، تو سیلز ڈپارٹمنٹ والوں کو کوٹا دیا جاتا ہے، ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، سیلز ٹارگیٹس، کہ آپ نے جو ہے نا وہ $10 ملین بنانے ہیں، آپ نے $50 ملین بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو سیلز کی ٹیم ہوتی ہے وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹارگیٹ میٹ نہیں ہوا. تو جب اینول ریویو میٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ریزلٹس کدھر ہیں، ٹارگیٹ کیوں نہیں میٹ ہوا؟ ٹارگیٹ میٹ نہیں ہوا، تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں تنخواہ ہی نہیں ملے گی، یا بہت کٹوتی کے بعد تمہیں تنخواہ ملے گی. اب وہ آگے سے سیلز مین کہے، دیکھیں میں نے اتنی محنت کری، میں نے تو سارا سال اپنے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھی، میں تو گھر ہی نہیں جاتا تھا، میں تو راتوں رات بھی جو ہے وہ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا تھا، سارا سارا دن جو ہے میں کسٹمر لوکیشنز کے اوپر یعنی خاک چھان رہا ہوتا تھا، اتنی میں نے محنت کری ہے، اب ریزلٹس نہیں آئے تو بھائی اس میں میرا کیا قصور؟ आगे से जवाब क्या मिलता है? नो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, हमें तो रिजल्ट्स चाहिए। ये काफिरों का तरीका है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। इस्लाम के अंदर तो इट्स द नियत देन द एफर्ट दैट काउंट्स। फर्स्ट नियत, वो खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए, और उसके बाद एफर्ट सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। वी डोंट केयर व्हाट द रिजल्ट्स आर, हमारा दीन क्या कहता है? वी डोंट केयर व्हाट द रिजल्ट्स आर, राइट? लेकिन शैतान क्या कहता है? नहीं, रिजल्ट्स। और शैतान के फॉलोअर्स दुनिया के अंदर भी क्या कहते हैं? रिजल्ट्स। काफिर है ना शैतान के फॉलोअर्स, कहते हैं रिजल्ट्स। उसी तरह शैतान इवन दीनदार मुसलमानों को भी कहता है रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, है ना? वो जो नंबरों वाला सिस्टम है स्कूलों के अंदर भी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, नस्लों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, नंबरात के पीछे, राइट, मार्क्स के पीछे। क्यों? रिजल्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है ये सारी की सारी एफर्ट। तो एजुकेशन के अंदर भी रिजल्ट ओरिएंटेड है सारी की सारी एफर्ट, राइट? जाहिलों को हमने अपने तालीमी निजाम हवाले कर दिया, और जाहिर है उन्होंने फिर क्या करना है इसके साथ? हमारा कसूर है कि हमने क्यों उनके हवाले किया हुआ है। ठीक है, हमको कम से कम तौबा करें ना इस जहालत से, राइट, जहालत से, इस जुल्मत से हम तौबा करें। लेकिन तैयार ही नहीं है। लंबी सी दाढ़ी उगाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इन जहालत के कामों से तौबा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जहालत की सोचों से तौबा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, राइट? तो इसी वजह से जो है ना, शैतान कहता है दीन में भी रिजल्ट्स। तो अब दीन में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो क्या होता है फिर? आजकल क्या हो रहा है? दीनी मकासद हासिल करने के लिए, दीनी मकासद हासिल करने के लिए जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, जो बयानात की क्लिप्स भेजी जाती हैं, जो वीडियोस भेजी जाती हैं, उनके अंदर क्या शामिल किया जा रहा है? जी, ताकि दीन गालिब आ जाए। क्या चीज शामिल की जा रही है आप बताएंगे? दीन को गलबा देने के लिए जो मैसेजेस हम एक दूसरों को भेजते हैं, जो वीडियो क्लिप्स बना के भेजते हैं, उसके अंदर क्या चीज डाली जा रही होती है? म्यूजिक। व्हाई म्यूजिक? कभी सवाल किया अपने आप से, म्यूजिक क्यों डालते हैं वो उसके अंदर? क्योंकि ये जाहिल समझते हैं कि म्यूजिक रूह की गिजा है। इट विल अट्रैक्ट अटेंशन, इट विल मोटिवेट पीपल, राइट? इलेक्शन की वीडियोस, दीनी जमातों की वीडियोस, म्यूजिक उसके अंदर पड़ी हुई है, राइट? और सो कॉल्ड जिहाद, जो कि जहालत का एक और नमूना, राइट, उसकी वीडियोस बना बना करके उसके अंदर म्यूजिक डाली हुई है। और जाहिल तो जाहिल, इवन जो इल्म पढ़े हुए लोग हैं वो भी उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। क्या है ये? क्यों है ये? बिकॉज वी थिंक रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, वी डोंट केयर अबाउट अल्लाह रूल्स। हमें अल्लाह ताला के हुक्मों और शरीयत और सुन्नत की पाबंदी की फिक्र नहीं है कि हमारी एफर्ट जो है वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। नहीं, वोट मिल जाए ज्यादा, या कोई और इस किस्म की जो है ना, वो कोई लोगों की जो लाइक्स हमें ज्यादा मिल जाए, एडमिरेशन हमें ज्यादा मिल जाए। अब उसके लिए सीधा तरीका, अगर हमें रिजल्ट्स मिलता हुआ नजर नहीं आ रहे सीधे तरीके से, तो हम उल्टा तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला क्या ये नहीं कहेगा हमसे, क्या मैंने तुमसे रिजल्ट्स मांगे थे? क्या मैंने तुमसे रिजल्ट्स मांगे थे जो तुम उसके लिए इस हद तक गिर चुके थे कि जिसको मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मना किया था वो काम तुमने दीन के अंदर दाखिल दाखिल कर दिया है? क्या नहीं पता, इल्म नहीं है क्या? दीन का काम करने वालों को इस बात का इल्म नहीं है क्या? और फिर म्यूजिक के बाद दूसरी चीज क्या? औरतें, औरतों को दाखिल करना, बेपर्दा औरतों को दाखिल करना दीन के काम के अंदर, राइट? भाई वो पर्दे के अंदर औरतों में काम करें, तुम जो है वो अपने इन कामों के अंदर औरतों को क्यों घसीट रहे हो? लेकिन क्या भाई, ज्यादा लोग आ जाएंगे और है ना, करना पड़ता है, आखिर कोई इतनी सख्ती भी सही नहीं है, एक से एक जो है वो उसके ऊपर। ठीक, तो ये तो बुनियादें हैं हमारी। अगर ये बुनियादें हमारी दुरुस्त नहीं हुई तो सारा का सारा किताबी इल्म हमारे किस काम का है? ये सारा का सारा हमारे खिलाफ हुज्जत बन रहा है, ये सारा का सारा इल्म। ठीक है, तो बेसिक्स हैं ये हमारे दीन की, इन बेसिक्स को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे आगे क्या चीज ठीक होने वाली है? तो आगे फरमाते हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ना हमारा काम है, सुनाना हमारा काम है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इस बुनियादी बात को समझने की। तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में अगर जाहिरी कामयाबी भी हासिल ना हो तो बंदे के लिए ये कामयाबी भी कामयाबी से कम नहीं है। एक बुजुर्ग आलम, मुझे फारसी नहीं आती तो उल्टा सीधा ही पढ़ लेता हूँ, तो आगे उर्दू ही पढ़ लेते हैं कि एक बुजुर्ग आलम जेल में थे, जुम्मे के रोज अपनी कुदरत के मुताबिक गुसल करते और अपने कपड़े धो लेते और फिर जुम्मे के लिए तैयार होकर जेल खाने के दरवाजे तक जाते। वहां पहुंचकर अर्ज करते कि या अल्लाह, मेरी कुदरत में इतना ही था, आगे आपके इख्तियार में है। मैंने एफर्ट कर ली जितनी मैं कर सकता था, आगे आपके इख्तियार में है। अल्लाह ताला की रहमत आमा से कुछ बईद ना था कि उनकी करामत से जेल का दरवाजा खुल जाता और ये नमाज जुमा अदा कर लेते, लेकिन उसने अपनी हिकमत से इस बुजुर्ग को वो मकाम आली अता फरमाया जिस पर हजारों करामतें कुर्बान हैं। हजारों करामतें कुर्बान हैं जिसके ऊपर कि उनके इस अमल की वजह से जेल का दरवाजा ना खुला, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने काम में हिम्मत नहीं हारी। हर जुम्मे को मुसलसल यही अमल जारी रखा। यही वो इस्तेकामत है कि जिसको अकाबिर सूफिया ने करामत से बालातर फरमाया है। अल इस्तेकामतु फौकल कराम। इल्म तो हमने पढ़ लिया ना, किताबें तो हमने पढ़ ली, अमल में हमारे कुछ आता है ये? या जब अमल का वक्त आता है तो उस वक्त ये थ्योरी जो होती है वो साइड पे लग जाती है, राइट? और फिर वो अमल जो है वो दुनिया के हिसाब से होता है, दुनिया के तरीके से होता है, दुनिया के तकाजों के मुताबिक अमल होता है। तो फिर दुनियादार में और दीनदार में क्या फर्क हुआ फिर? इसी वजह से ना ये करामतों का मामला जो है, ये तो वैसे भी इसके बारे में ज्यादा, बस करामत हक है, इसका इनकार अहले सुन्ना वल जमात इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पिछले दिनों एक साथ जिसने जरा दोस्तों में बात भी करी थी कि एक हमारे दरमियान ना एक फिरका है, फिरका, ठीक है, ये वो अकीदे वाला फिरका वैसा वाला नहीं है जैसे कि दूसरे फिरके हुआ करते थे, करामिया और मोतजला और खवारिज वाला फिरका, या ये क्या नाम है उनका, शिया फिरका वगैरह। लेकिन ये एक जरा सा समझने वाला फिरका है, इसको कहते हैं करामती। ये कोई कहता नहीं है, इस फकीर की ये कॉइन टर्म है, ये करामती फिरका, ठीक है ना। इनकी यानी दीन का आगाज भी करामत से होता है, इनके दीन का इख्तिताम भी करामत के ऊपर होता है, और इनको हर चीज के अंदर कहीं से कोई करामत मिल जाए बस, है ना। वो हमें याद आता है, आप में से अक्सर मौजूद भी थे और आपके बच्चे भी मौजूद थे, तो हमने ना बिल्कुल शुरू में जो बच्चों के साथ जो है वो कुछ इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तो उस इवेंट में ना जो पहला इवेंट था उसमें हमने अपने एक यंग साथी को बुलाया जो कि कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, और उनसे कहा कि जी आप अपने ब्लैक अपने कराटे की जो है ना जरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं ताकि हमें भी पता चले कि कराटे क्या चीज़ होती है, हो सकता है हमारे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। तो वो जो भाई थे उन्होंने कराटे में मूव्स करके दिखाई, फलानी चीज तोड़ी, इस स्लैब को तोड़ा और इधर से किके मारी, उधर से किके मारी, सबने जो है बड़ा दिलचस्पी के साथ उसको देखा। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने आखिर में अपना स्पेशल आइटम दिखाया, वो क्या था, उसको कहते हैं वो 360, ठीक है, 360 डिग्रीज की जो है ना वो किक होती है। तो जब उन्होंने वो 360 वाली किक लगाई ना, तो दो चार बच्चों की जो है ना वो जोर से आवाज आई, वाह, राइट? आपको अगर याद हो कौन बच्चे थे, मुझे तो याद है कौन बच्चे थे वो, ठीक है, तो उन्होंने कहा वाह, ठीक है। तो यही मामला जो है ना वो हमारा है, हमें कोई वाओ किस्म की चीज चाहिए, हमें दीन के अंदर जो है ना वो वाओ चाहिए, राइट, ओ चाहिए हमें, तो वो करामतों से मिलता है हमें। इसी वजह से करामतों का हर वक्त जिक्र, हर वक्त करामतें, हर वक्त करामतें, ठीक है। करना कराना कुछ है नहीं, हुक्म के ऊपर अमल नहीं करना, शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश नहीं करना, अपनी नीयत तक की इसलाह नहीं करना, लेकिन करामतें करवा लो हमसे या बुलवा लो हमसे, ठीक है ना। तो इन करामतों को जो है ना, हर एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, ठीक है ना, तो करामतें ऑल्सो हैज इट्स प्लेस, उसको उसकी प्लेस के ऊपर रखें। असल चीज जो है वो इस्तेकामत है, हमारी नीयत में इस्तेकामत, हमारी नीयत में इस्तेकामत, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा के लिए हमारी नीयत, सबसे पहले नीयत में इस्तेकामत, इसी को कहते हैं कल्ब को सब्त बनाना। कल्ब उलटता पुलटता रहता है, युकल्लिबु, उलटता पुलटता रहता है, हमें ये टास्क दे करके इस दुनिया में भेजा गया है कि हम इस कल्प को सख्त बनाए। सख्त का मतलब होता है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट किस चीज के ऊपर? स्टेडफास्ट अल्लाह की रजा की नियत के ऊपर जमाए इस कल्प। हमारे मशायख इसको वकूफ कल्बी भी कहते हैं, अपना ध्यान कल्ब की तरफ कि क्या कर रहा है ये, किस तरफ इसका इसकी नीयत जा रही है, किस तरफ इसके जज्बात जा रहे हैं। और फिर कल्ब के अंदर इस्तेकामत के बाद फिर अमल के अंदर इस्तेकामत। ठीक है, तो करामतें तो एक्सेप्शन होती हैं और उनसे रिजल्ट्स भी हमेशा नहीं होते, वो खास मकाम होते हैं। अल्लाह ताला करामत करवाते हैं, किसी को फायदा हो जाता है, वरना ज्यादातर लोगों को तो फायदा होता भी नहीं है। ठीक है ना, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मौजजा दिखाया था, सबसे बड़ा मौजजा नबी अलैहिस्सलाम का इस किस्म का जो मौजजा था शक्ल कमर का, कितने लोग मुसलमान हो गए थे मक्का मुकरमा के अंदर। ठीक है ना, ईमान वालों का ईमान मजबूत हुआ, लेकिन काफिर जो है वो मुसलमान नहीं होते थे, इल्ला माशाल्लाह चंद एक हुए थे, बहुत थोड़े से। ठीक है, तीसरा मसला आगे पढ़ते हैं कि इससे ये साबित हुआ कि किसी शख्स पर कोई गलत तोहमत बांधी किसी शख्स पर कोई गलत तोहमत बांधे तो अपनी सफाई पेश करना सुन्नत अंबिया है। ये कोई तवक्कुल या बुजुर्गी नहीं कि उस वक्त खामोश रहकर अपने आप को मुजरिम करार दे दे। ठीक है, यानी ऐसे सारे के सारे असबाब जो है वो दिखा दे, बता दे गोया कि लोगों को, कि बस लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ इसी ने जुर्म किया था, हालांकि इसने जुर्म नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से यानी ये भी एक असबाब इख्तियार करना, ये जो सफाई पेश करना है ना, ये भी असबाब इख्तियार करना है, मीन्स को इस्तेमाल करना। रिजल्ट्स ये भी अल्लाह के हाथ में, भाई आपने सफाई पेश कर दी लेकिन जज साहब ने जो है वो आपकी सफाई सफाई सुथराई जो भी आपने पेश करी उसको बाय नहीं किया, उसको बात समझ में नहीं आई, उसने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। ठीक है, तो उसका फैसला ये अल्लाह के इख्तियार में था, आपका काम था सफाई पेश करना, ये असबाब इख्तियार करना है। ठीक है, तो ये तो बात हजरत ने लिख दी, लेकिन यहाँ पर एक और चंद एक और भी पॉइंट्स हैं हमारे लिए कि सफाई पेश करने की ये जो यानी सिचुएशन बयान की गई है ना, इस सिचुएशन के ऊपर जरा हम क्लियर हो जाएं कि ये सिचुएशन कैसी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो 100% कंफर्म है इनको ये बात। ठीक है, यानी सिर्फ गुमान नहीं है कि मैं सच्चा हूं, सिर्फ इस बात का इनको गुमान नहीं है कि मैं बेकसूर हूं, बल्कि इनको यकीन है कि वो बेकसूर हैं, क्योंकि ये मामला उनके बिल्कुल सामने हुआ है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ जिसने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है वो भी इनके सामने 100% क्लियर है कि वो कसूरवार है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जिसके अंदर एक 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 मुजरिम किस्म का इंसान जो है उसने वाकई कसूर किया है और आपने कसूर नहीं किया है, आपको क्लियर है ये बात, और वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, इसके अंदर अपनी सफाई पेश करना ये अंबिया की सुन्नत। ठीक है ना, लेकिन इस बात को हम उस तरफ नहीं लेके जा सकते कि हम अपने बेकसूरी का गुमान रखते हुए और अगले बंदे के कसूरवार होने का गुमान रखते हुए अपनी सफाइयां पेश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, यानी हमें कंफर्म नहीं होता कि अगले बंदे ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, हम अपनी तरफ से गुमान रख करके कि मेरी शिकायतें लगाई होंगी, मेरी शिकायतें किसी ने करी होंगी, हम जो है वो यानी वी जंप इनटू सफाइयां, है ना। ये सफाइयां देना जो है ना, ये मतलब वैसे तो जो जरा नंबर नंबर एक किस्म के लोग होते हैं ना नंबर वन किस्म के लोग, वो सफाइयां नहीं पेश करते, उनको इससे सरोकार नहीं होती कि सफाइयां पेश करें। एक नंबर के बदमाश, ठीक है, नंबर वन का मतलब एक नंबर के बदमाश, वो सफाइयां पेश नहीं करते। सफाइयां कौन पेश करते हैं उनके लिए कहा जाता है दो नंबर ही, जो दो नंबर ही होते हैं ना वो हर वक्त जो है ना वो गुमान रख करके उनको, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं दाढ़ी में तिनका, ठीक है, द गिल्टी कॉन्शियंस इज इट्स ओन एक्यूजर, सुना है ना ये मुहावरे, उर्दू वाले भी अरबी और अंग्रेजी वाला भी। तो हर वक्त है ना ये कि भाई कोई किसी ने मेरी शिकायत करी होगी, किसी ने मेरे खिलाफ कोई बात कर दी होगी, तो इस वजह से जो है ना वो बस हर वक्त सफाइयां। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे बात नहीं हो रही, इस वाले सिचुएशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, खाली जो है वो अजम्पशंस की बुनियाद पर सफाइयां पेश करना, ये नबी अंबिया की सुन्नत नहीं है, ठीक है। और खास तौर पर जब अगर कोई बड़ा हो, ठीक है, आपका उस्ताद हो, आपके शेख हो, वो आपको इस्लाह की नीयत से जो है वो कोई बात अगर जरा आपकी रोक टोक कर रहे हैं, कोई डांट डपट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो फौरन ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो शेख साहब मुझे डांट रहे हैं या जो शेख साहब मेरी इस्लाह कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये किसी ने मेरी चुगली करी है, राइट। और फिर चुगली का एज्यूम करके फौरन से सफाइयां शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि भाई शेख साहब अगर डांट रहे हैं तो हो सकता मतलब किसी वजह से डांट रहे होंगे ना, मतलब उनके पास भी तो कुछ अकल समझ है कि नहीं है। ऐसी अकल से पैदल किस्म के किसी इंसान को आपने शेख बना लिया अपना, ये किसी बिल्कुल ही पैदल किस्म के इंसान को आपने जो है वो अपना उस्ताद बना लिया, भाई उनका भी तो कुछ तजुर्बा है ना, उनके पास भी तो दो आंखें हैं, और अगर उनके बारे में अच्छा गुमान रखें तो बसारत के साथ साथ बसीरत भी होगी उनके पास शायद, राइट। तो बसारत और बसीरत दोनों के साथ वो आपको जो मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर जरूरत महसूस करी होगी किसी वजह से डांटने की, तो चुप से सुन लो यार, है चुप से सुन भी लो, और उसके बाद फिर जरा सा सोच भी लो कि भाई क्या वजह होगी कि इन्होंने मुझे डांटा होगा, मेरी कोई गलती होगी, हो सकता है कि बजाहिर वो गलती मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन कोई और इसमें नुकता होगा, कोई वजह होगी। ये भी सोचा जा सकता है कि इन्होंने किसी वजह से डांटा, या अल्लाह ताला ने इनके दिल में कोई बात डाली है कुछ, या अल्लाह ताला ने मुझे सुनवाया है, ये हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी वजह से इनसे सुनवाया, क्योंकि ये मेरे बड़े हैं, इनको मैंने अपना मुसले बनाया है, राइट। तो सही तरीका क्या है कि छठ सफाइयों की तरफ जाने की बजाय इंसान सोचे कि भाई क्या वजह होगी, क्या गुनाह हुआ होगा मुझसे, क्या गलती हो गई होगी मुझसे जिसकी वजह से ऐसा मामला हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, और ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, उसको इस यानी इन दोनों को आपस में मिक्सअप हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ, और दूसरी एक बहुत अहम बात वो ये है कि आजकल जो इल्जामात लगते हैं ना, ठीक है, वो दूसरे तरीके एक और शक्ल में भी लगते हैं, वो शक्ल ऐसी नहीं होती इंडिविजुअल किस्म की कि भाई एक बंदे ने आकर के किसी दूसरे बंदे के ऊपर इल्जाम लगा लिया, बल्कि आजकल हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत, ठीक है, इन पिछली 2 सदियों की, इस सदी और पिछली सदी की, वो क्या है, मीडिया की मुसीबत, मीडिया, ठीक है। तो बहुत सारे इल्जाम किसी के ऊपर लग रहे होते हैं, वो मीडिया के थ्रू लग रहे होते हैं, और मीडिया के ऊपर जो है ना फिर इल्जाम की बौछार हो रही होती है, सही है, क्योंकि मीडिया तो भाई वो तो फिर वायरल होने वाली चीज होती है, चाहे वो अखबारी मीडिया क्यों ना हो, एक एक अखबार छप गया, अब वो हजारों हाथों के अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो टीवी के ऊपर, वो तो लाखों लोगों ने टीवी को देखना है, और फिर सोशल मीडिया, ये तो करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया को फॉलो करना है, ठीक है। तो आजकल जो इल्जाम लगते हैं ना, तो उनकी अगर सफाई पेश करने के पीछे हमारे मशायख लग गए हैं ना, सफाई पेश करना कि भाई अंबिया की सुन्नत है, उन्होंने सफाई पेश करी थी तो हमें भी सफाई पेश करनी चाहिए, ठीक है, सुन्नत पे अमल करना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो यानी ये मीडिया वाले जो इल्जाम होते हैं ना, इनके आगे जो है वो खामोशी, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो खामोशी ही आफियत है। इस आज इसके अपने साथ वाकया हुआ, आज से मेरे ख्याल में ये 2005 या 4, आई डोंट नो, यानी बहुत पुराना वाक्य है। उस वक्त जो है वो अमेरिका में रहते थे, तो एक हमारे जो मोहल्ले की मस्जिद थी, उन लोगों ने साजिश को कहा हुआ था कि भाई आप जुमे को अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो आप ना जुमे का बयान जो है वो हमारे यहाँ आकर के आप दे दिया करें, एक जुम्मा, वो 2-3 जुम्मे होते हैं वहां पे क्योंकि जगह कम होती है। तो इस साजिश ने फिर जुम्मा बयान देना शुरू किया, तो एक दफा मुझे याद है कि मैंने जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बयान कर दिया, ठीक है, कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ठीक है, कि अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और उलुल अम्र की अतात करो। उलुल अम्र कौन है भाई, ना तो अल्लाह है ना तो रसूल है, ये उलुल अम्र क्या चीज होती है भाई? उलुल अम्र तो इंसान होते हैं, ठीक है ना, जो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने जिनको अथॉरिटी दी हुई होती है, वो अथॉरिटी क्या होती है उसके ऊपर तो मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकात तुमने पूरी किताब लिख मारी है, ठीक है ना, द क्या है वो उसका नाम है ख्याल में, द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बहरहाल तो ये तो इंसान ही होते हैं ना, तो भाई मैंने बयान में जब ये बात करी तो मैंने कहा भाई इंसानों की अतात का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो उसके शायद अगले दिन या उस जो फॉलोइंग वीक था उसके अंदर शिकागो सिटी के अंदर जो अखबार निकलता था ना, पाकिस्तानी गालिबन उर्दू ही अखबार था वो, पाकिस्तानी उर्दू यानी, उस अखबार के अंदर बाकायदा किसी ने खबर दे मारी कि एक कोई आए हैं नए नए कोई खतीब, तो उन्होंने जो है ना वो ये बोल दिया है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंसानों का की अतात करने का हुक्म देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं परेशान, यार ये क्या अखबार के अंदर इन्होंने इस फकीर के बारे में खबर डाल दी, ठीक है। तो अल्लाह की कुदरत के हजरत जी हमारे शेख साहब जो है वो शिकागो तशरीफ ला रहे थे, तो गालबन मैं ही शायद एयरपोर्ट से उनको लेके आ रहा, तो मैंने रास्ते में हजरत जी से पूछा कि हजरत जी ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने तो अखबार के अंदर खबर दे दी है मेरे खिलाफ किसी, ये तो इंसानों की अतात के बारे में कह रहे हैं हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कुरान मजीद के अंदर। तो हजरत जी ने मुझे जवाब दिया खामोशी अख्तियार कर, चुप हो जाएं, कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इसमें अपने आप को, किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं खामोश हो गया, ठीक है। अब वो खामोशी से भी कुछ थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन अलहमदुल्ला ठीक है, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई बात मानने की, अल्लाह का शुक्र है थोड़े दिन के बाद वो सारा मसला रफा दफा हो गया। जो इस किस्म की हरकतें करने वाले लोग होते हैं तो उनके तो वैसे ही कोई बेसिस होती नहीं है, तो इस वजह से ना आज हम बहुत सारे अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि उनके ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे होते हैं, एक से एक इल्जामात लगा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो इस लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं ना, मीडिया के लेवल के ऊपर, तो आगे से वो फिर जवाब नहीं दे रहे होते हैं इन चीजों का, ठीक है। तो कोई ये ना समझे कि वो खिलाफ सुन्नत काम कर रहे हैं जवाब ना दे करके, सफाई ना पेश करके। फिर उसके बाद चौथा मसला हजरत ने लिखा कि वो है इसमें, यानी चौथा मसला इसमें शाहिद का है कि ये लफ्ज जब आम फिकही मुआमलात और मुकदमात में बोला जाता है तो इससे वो शख्स मुराद होता है जो जेरे नजा मामले के मुताल्लिक अपना चश्मदीद कोई वाकया बयान करे। इस आयत में जिसको शाहिद के लफ्ज से ताबीर किया है उसने कोई वाकया या इसके मुताल्लिक अपना कोई मुशाहिदा बयान नहीं किया, बल्कि फैसला करने की एक सूरत की तरफ इशारा किया है, यानी वो बच्चा, तो उसने तो ये नहीं कहा कि मैंने देखा था और उसने ऐसे नहीं किया था, उसने वैसे किया था, ये सब कुछ उसने बयान ही नहीं किया बच्चे ने, तो फिर उसको शाहिद क्यों कहा कुरान मजीद ने? उसको हजरत एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को तो इस्तलाही तौर पर शाहिद नहीं कहा जा सकता, मगर जाहिर है कि ये इस्तराहात सब बाद के उलमा व फुकहा ने अफहाम व तफहीम के लिए इख्तियार कर ली हैं, कुरान करीम की ना ये इस्तलाहें हैं ना वो इनका पाबंद है, कि शाहिद का जो लफ्ज है ना वो सिर्फ उसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जिसने अपने फाइव सेंसेस से किसी चीज का मुशाहिदा किया हो, ठीक है ना। ये तो भाई फुकहा ने आसानी की खातिर और जो सिस्टम्स ह्यूमन सोसाइटी के जो सिस्टम्स यानी बाद में लोगों ने इस्टेब्लिश किए तो उसके अंदर शाहिद के लफ्ज इसके लिए कॉइन कर दिया, ठीक है। तो भाई कुरान मजीद में इसका पाबंद नहीं है ना, तो कुरान मजीद ने फरमाया कि कुरान मजीद ने यहाँ उस शख्स को शाहिद इस मानी के एतबार से फरमाया है कि जिस तरह शाहिद के बयान से मुआमले का तस्फिया आसान हो जाता है और किसी एक फरीक का हक पर होना साबित हो जाता है, उसी तरह उस बच्चे के बयान से भी यही फायदा हासिल हो गया कि असल तो उसकी मौजज़ाना गोयाई है, गोयाई ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात के लिए शाहिद थी, और फिर उसने जो अलामात बतलाई उनका हासिल भी अंजामेकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की बरात का सबूत है, ठीक है। उसने तो खाली अलामात बता दी ना, एक उसूल बता दिया, तो अंजाम क्या निकला? यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात। इसलिए ये कहना सही हो गया कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी, ठीक है, हालांकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा नहीं कहा, ठीक है, उसने हक में गवाही नहीं दी, ना तो उसने ये कहा कि मैंने देखा था, ना उसने ये कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट उससे क्या निकला उसकी बुनियाद पर उसको भी शाहिद कह दिया गया, क्योंकि शाहिद का भी मकसद यही होता है, बल्कि उसने तो यानी हालांकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा नहीं कहा बल्कि दोनों एहतमालों का जिक्र कर दिया, यानी अगर ऐसे हो, कब कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ अलैहि सलाम जो है वो कसूरवार है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलैखा कसूरवार है। तो जुलैखा के सच्चे होने को एक ऐसी सूरत में भी, और जुलैखा के सच्चे होने को एक ऐसी सूरत में भी फर्जी तौर पर तस्लीम कर लिया था जिसमें उनका सच्चा होना यकीनी ना था। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा जुमला मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरी मदद कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि जुलैखा के सच्चे होने को एक ऐसी सूरत में भी फर्जी तौर पर तस्लीम कर लिया, क्योंकि वो सच्ची तो नहीं थी, वो तो यानी कोई एहतमाल ही नहीं था उसका सच्चे होने का, लेकिन फर्ज क्या, फर्ज कर लो कि अगर कुर्ता पीछे से फटा है, सॉरी आगे से फटा है, तो जुलैखा सच्ची है। ठीक है, तो जिसमें उनका सच्चा होना यकीनी नहीं था। जुलैखा के लिए हजरत ने उनका लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि बाद में ये भी मुसलमान हो गई थी, और एक रिवायत के मुताबिक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी इनसे हो गई थी जब अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया था, तो इनकी भी फिर जाहिर है फिर ये भी सहाबिया बन गई ना एक नबी की, तो इनके लिए भी फिर तमीज का लफ्ज इस्तेमाल करना। तो फरमाते हैं कि जिसमें उनका सच्चा होना यकीनी ना था बल्कि दूसरा भी एहतमाल मौजूद था, क्योंकि कुर्ते का सामने से फटना दोनों सूरतों में मुमकिन है। ठीक है, कि जुलैखा ने जो है ना वो, हाँ बल्कि एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से जो है बात क्लियर हो गई मेरे जहन में, कि भाई जुलैखा आगे से भी कुर्ता फाट फाट सकती थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे हटने की जो है वो जोर से कोशिश करते तो आगे से भी कुर्ता फट सकता था। ठीक है, तो उस बच्चे ने जो बात करी तो उसमें दूसरा एहतमाल भी मौजूद था, क्योंकि कुर्ते का सामने से फटना दोनों सूरतों में मुमकिन है। ठीक है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार थे उसमें भी मुमकिन है, और जुलैखा कसूरवार थी उसमें भी मुमकिन है कि शायद सामने से फटता, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे होने को सिर्फ ऐसी सूरत में तस्लीम किया था जिसमें इसके सिवा कोई दूसरा एहतमाल ही नहीं हो सकता। क्या मतलब कि कोई पीछे से अपना कुर्ता फाड़ नहीं सकता, ठीक है ना, कोई पीछे से अपना कुर्ता फाड़ नहीं सकता। ठीक है, और ये भी के ये वाला यानी क्राइम करते हुए पीछे से कुर्ता फटने का कोई एहतमाल ही नहीं हो सकता, आगे से कुर्ता फटने का एहतमाल हो सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में कि जुलैखा सच्ची थी या यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, लेकिन पीछे से कुर्ता फटने का एहतमाल हो ही नहीं सकता अगर जुलैखा सच्ची होती तो। ठीक है, लेकिन अंजाम का नतीजा इस हिकमत अमली का यही था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरी होना साबित हो। ठीक है, तो ये चौथा मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। 5 मिनट 6 मिनट है अभी हमारे पास, तो पांचवा मसला भी शुरू कर लेते हैं, अगरचे कि मेरे ख्याल में मैंने बालियास का नहीं किया था। तो फरमाते हैं कि पांचवा मसला इसमें यह है कि मुकदमात और खुसूमात के फैसलों में कराइन और अलामात से काम लिया जा सकता है, जैसा कि इस शाहिद ने कुर्ते के पीछे से फटने को इसकी अलामत करार दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे, जुलैखा पकड़ रही थी। इस मामले में इतनी बात पर तो सब फुकहा का इत्तेफाक है कि मामलात की हकीकत पहचानने में अलामात और कराइन से जरूर काम लिया जाए, जैसे कि यहाँ किया गया, लेकिन महज अलामात और कराइन को काफी सबूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम में भी दर हकीकत बराअत का सबूत तो उस बच्चे की मुअज्जजाना अंदाज से गोयाई है, अलामात व कराइन जिनका जिक्र किया गया है उनसे इस मामले की ताईद हो गई। ठीक है, यानी जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव वो होता है ना, वो पुलिस के लोग होते हैं जो खास इन्वेस्टिगेशन जिनका काम होता है, तो वो शवाहिद तो तलाश कर रहे होते हैं लेकिन बहुत सारी अलामात और कराइन से भी वो यानी शवाहिद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर शवाहिद मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम इतना पता चल जाता है कि हाँ जी दाल में कुछ काला है। अब जो है वो मेहनत जारी रखते हैं, शवाहिद की तलाश जो है वो जारी रखते हैं, अगर शवाहिद मिल गए क्लियर तो फिर जो है वो फैसला होगा, अगर नहीं मिले तो खाली अलामात और कराइन की बुनियाद पर फैसला नहीं किया जाएगा। तो शरी गवाही जो है ना वो फिर जरूरी है, जिस जिस गवाही को जो है वो शरीयत तस्लीम करती है उसको शरी गवाही कहेंगे। इसमें कोई और चीज तो समझ में नहीं आ रही। बहरहाल यहां तक ये साबित हुआ कि जब जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत व इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने एक छोटे बच्चे को खिलाफ आदत गोयाई देकर उसकी जुबान से यह हकीमाना फैसला साबित फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो पीछे से फटा है तो ये उसकी साफ अलामत है कि वो भाग रहे थे और जुलैखा पकड़ रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। मज़कूरा आयात में से आखिरी दो आयतों में ये बयान हुआ है कि अजीज मिस्र बच्चे के इस बोलने ही से ये समझ चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात जाहिर करने के लिए ये माफ़ोकुल आदत सूरत पेश आई है। माफ़ोकुल आदत यानी आदत किसको कहते हैं, अल्लाह ताला का जो दुनिया में बनाया हुआ निज़ाम है कि छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा बात नहीं कर सकता, और इतना छोटा बच्चा जो है वो यानी इतनी अकल वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अल्लाह की आदत है, इसको अल्लाह ताला की आदत कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सूरत होती है उसको अल्लाह ताला की कुदरत कहते हैं। ठीक है, यानी दिस इज द रूल, आदत के लिए अंग्रेजी का लफ्ज क्या होगा, दिस इज द रूल, और कुदरत के लिए अंग्रेजी का लफ्ज होगा एक्सेप्शन। ठीक है, तो मा फौकुल आदत यानी रूल से हट करके, उर्दू में जिसको कहे ना रूल से हट करके, तो वो तो इसी से समझ गया था। फिर उसके कहने के मुताबिक जब ये देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी पीछे से ही फटा है तो यकीन हो गया कि कसूर जुलैखा का है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हैं। तो उसने पहले तो जुलैखा को खिताब करके कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, यानी ये सब तुम्हारा मकरो हीला है कि अपनी खता दूसरे के सर डालना चाहती हो। फिर कहा कि औरतों का मकरो हीला बहुत बड़ा है कि उसको समझना और इससे निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर उनका नर्म व नाजुक और ज़यीफ़ होता है, देखने वाले को उनकी बात का यकीन जल्द आ जाता है, मगर अक्ल व दयानत की कमी के सबब बसा औकात वो फरेब होता है। ठीक है, यानी इंसान के ऊपर जो जाहिर में कैफियत होती है ना, उसका एक असर होता है। तो इस वजह से चूंकि सिन्फ नाजुक अल्लाह ताला ने बनाया है, बेशक उनको मीडिया के जरिए से सिन्फ आहन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर, ठीक है ना, ड्रामे भी बना रहे हैं उसके लिए जो है वो, और भी हरकतें उल्टी सीधी करते रहते हैं कि किसी तरीके से औरत ये बात तस्लीम कर ले कि वो सिन्फ नाजुक नहीं है, वो सिन्फ आहन है, और बहुत सारी तस्लीम कर भी चुकी हैं बदकिस्मती से। ठीक है, लेकिन भाई है तो वो सिन्फ नाजुक की, और जब रोने पर आती है तो माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर उसके बाद यानी बड़े से बड़े इंसान का जो है ना फिर दिल पसीज जाता है अगर औरत रोना शुरू कर दे। ठीक है, तो अब वो रोना मगरमच्छ के आंसू हैं कि वो हकीकत के यानी सच्चाई की वजह से वो रो रही है, ये किसको पता, राइट? ये तो दिलों का भेद है जो कि अल्लाह ताला जानता है, या जिसको मामले की तफसील का पता है वो जानता है। नए बंदे के सामने तो ये सारी हकीकतें नहीं होती है ना। तो ये अल्लाह ताला जिसने के मर्दों को भी बनाया, जिसने के औरतों को भी बनाया ना, ये उसी का कलाम है कि नहीं, उसी का है ना, क्या ख्याल है? अल्लाह ही का कलाम है ना, तो ये बात तो अल्लाह फरमा रहा है भाई, कोई मौलवी साहब तो नहीं फरमा रहे है। ठीक है ना, इन्ना कैद कुन्ना अजीम। ठीक है, क्योंकि कैद तो मर्द भी करते हैं, ये नहीं कि मर्द कैद नहीं करते, लेकिन मर्द जो है ना वो सिन्फ नाजुक नहीं होते, और मर्द जो है ना वो इतनी आसानी से वो रोते नहीं है, कुछ तो बेचारे उनको भी रोना भी बहुत आता है। ठीक है, लेकिन हर मर्द नहीं रो सकता इस तरह तरह से ना, और फिर वो अपनी कमजोरी और ऐसी यानी फिर माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर औरतों को ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, ठीक है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है, जानवरों में ऐसा नहीं होता, पता है ना आपको, जानवरों में ऐसा नहीं होता, ना परिंदों में ऐसा होता है, वहां तो मर्द ज्यादा खूबसूरत होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उल्टा मामला है। तो औरतें ज्यादा खूबसूरत भी होती हैं तो सुन देखने वाले को, जब ऐसी वो आधा आधा काम तो पहले से ही हो गया होता है। ठीक है, तो इन सारी रीजंस के जमा होने के बाद फरमाया, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम। ठीक है ना, कि बहुत बड़ा इनका जो होता है ना कैद होता है, इन मर्दों का कैद जो है ना वो इतना इतनी अजमत तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इतनी सी बात है, और ये बनाने वाले का 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 जिसने बनाया वही सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है अपनी प्रोडक्ट को। तफसीर कुर्तुबी में बरिवायत अबू हुरैरा जतान मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों का कैद और मकर शैतान के कैद और मकर से बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये चले यहाँ पे लेक्चर तो रोक देते हैं। अच्छा सॉरी, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों का कैद और मकर शैतान के कैद और मकर से बड़ा हुआ है। जिस जब भी हमारे मशायख जो है ना इस बात को खास फरमाते हैं, क्योंकि हक तआला ने शैतान के कैद के मुतालिक तो ये फरमाया है कि वो ज़ईफ़ है, इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, ठीक है, कि शैतान का जो मकर है ना वो ज़ईफ़ है। और औरतों के कैद के मुतालिक ये फरमाया, कैद का मतलब वही मकर, फरेब, डिसेप्शन और प्लानिंग, राइट, ये सारी चीजें जो है वो कैद के मानी में आती हैं, कि इन्ना कैदकुन्ना अजीम, यानी तुम्हारा कैद बहुत बड़ा है। और ये जाहिर है कि इससे मुराद सब औरतें नहीं, बल्कि वही है जो इस तरह के मकरूह हीले में मुब्तला हों। अजीज मिस्र ने जुलैखा को उसकी खता बतलाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ अरिद अन हाजा, ठीक है, यानी ए यूसुफ तुम इस वाक़े को नज़रअंदाज करो और किसी से ना कहो ताकि रुसवाई ना हो। फिर जुलैखा को खिताब करके कहा, वस्तग़फ़िरी लिज़म्बी की इन्नकी कुंती मिनल ख़ातिईन, यानी खता सरासर तुम्हारी है, तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगो। इससे बज़ाहिर ये मुराद है कि वो अपने शोहर से माफ़ी मांगे, और ये मानी भी हो सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगे कि खुद खता की और तोहमत उनके सर डाल दी, ठीक है। यहाँ ये बात गौरतलब है कि शौहर के सामने अपनी बीवी की ऐसी खयानत और बेहयाई साबित हो जाने पर उसका मुश्ताइल ना होना और पूरे सुकून और इत्मीनान से बातें करना इंसानी फितरत से बहुत काबिले ताज्जुब है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये वजह भी हो सकती है कि अजीज मिस्र कोई बेगैरत आदमी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, नहीं, कि अजीज मिस्र कोई बेगैरत आदमी हो, गैरतमंद होता तो अभी तो एक लगाता उसको या कुछ और ही कर बैठता, ठीक है। तो और ये भी मुमकिन है कि हक तआला ने जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से फिर रुसवाई से बचाने का फौकुल आदत इंतजाम फरमाया, इसी इंतजाम का एक जुज ये भी था कि अजीज मिस्र को गुस्से से मुश्तइल नहीं होने दिया। वरना आम आदत के मुताबिक ऐसे मौके पर इंसान तहकीक व तफ्तीश के बगैर ही हाथ छोड़ बैठता है, और जुबान से गाली गलौज तो मामूली बात है। अगर आम इंसानी आदत के मुताबिक अजीज मिस्र को इश्तियार हो जाता तो मुमकिन है कि उसके हाथ से या जुबान से यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ कोई बात सरजद हो जाती। ये कुदरत हक के करिश्मे हैं कि अताअत हक पर कायम रहने वाले की कदम कदम पर किस तरह से हिफाजत की जाती है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाद की आयतों में और वाक़ जिक्र किया गया है जो पिछले किस्से से ही वाबस्ता है, वो ये कि ये वाक़ छुपाने के बावजूद दरबारी लोगों की औरतों में फैल गया। इन औरतों ने अजीज की बीवी को लान तान करना शुरू किया। बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया कि ये पांच औरतें अजीज मिस्र के करीबी अफसरों की बीवियां थीं, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लगाई भुजाई करी, आगे लोगों को बता दिया, इसका तो हमें नहीं गुमान करना चाहिए क्योंकि पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, ठीक है ना। अजीज मिस्र इस बात को जो है वो लोगों को बता दे, इसका भी कम एहतमाल है, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि छोड़ दो इसको और है ना रहने दो वगैरह। तो अब एक तरफ ये कहे कि जी छोड़ दो उसको और आगे जाकर के दूसरों को बता दे, इसका भी एहतमाल कम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो बिल्कुल एहतमाल नहीं है, वो तो अल्लाह के नबी थे। इसका एहतमाल कम है कि अजीज मिस्र जो है वो अपने हाथों यानी अपनी रुसवाई करवाए, तो फिर किसका एहतमाल है? तीन ही लोग थे ना, या तो वो छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे ने जाकर के, अब आगे भी यानी मौजा जो है वो कंटिन्यू हो रहा था, आगे अखबार में खबर भी देनी थी उस छोटे बच्चे ने, नहीं, तो फिर किसका एहतमाल है? किसने बताया होगा आगे? एक बेगम साहिबा ही हो सकती हैं कि जिन्होंने आगे जाके, और ये चीज़ जो है वो आम मुशाहिदा माशाल्लाह है ना, किसी को बताती हैं, कहती हैं मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को नहीं बताना, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आगे जाती है, कहती है मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, किसी को और को नहीं बता रही हूँ, तुम किसी को नहीं बताना। फिर वो आगे तीसरी के पास जाती है, तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो जंगल की आग की तरह से चीजें फैल जाती हैं। तो यही मोस्ट लाइकली यही हुआ होगा भाई, कि ये औरतें आपस में कहने लगेंगी, देखो कैसी हैरत और अफसोस की बात है कि अजीज मिस्र की बीवी इतने बड़े मर्तबे पर होते हुए अपने नौजवान गुलाम पर फरिश्ता होकर उससे अपनी मर्तब बर आरी चाहती है। हम तो उसको बड़ी गुमराही पर समझते हैं। आयत में लफ्ज़ फताहा फरमाया है, फतेह के मानी नौजवान के हैं। उर्फ में ममलूक गुलाम जब छोटा हो तो उसको गुलाम कहते हैं, जवान हो तो लड़के को फता और लड़की को फतात कहा जाता है। इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलैखा का गुलाम या तो इस वजह से कहा गया कि शौहर की चीज को भी आदतन बीवी की चीज कहा जाता है, और या इसलिए कि जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने शौहर से बतौर हिबा और तोहफा ले लिया था। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात की तफसीर पढ़ना भी आज मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि इसमें जो भी बातें हमने इतने अरसे में करी हैं तो उनका हमें फ़ायदा हासिल हो, और जो फ़ायदे की बात थी उसके ऊपर अमल की इखलास के साथ भी हमें तौफीक नसीब हो, और जो गलती अगर इस फ़कीर से हो गई है तो अल्लाह ताला उसको दरगुदर फरमाए और नरमी का मामला फरमा दे। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।